नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी, बेली ब्रिज के साथ अन्य सामग्री और भेजी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान सुरक्षा बलों द्वारा बलूच छात्र के जबरन अपहरण, यातना और हत्या की जांच की मांग की। संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण अहमदाबाद में आज से शुरू और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वार्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
इंडिया बिलीव्स दैट एंडलेस वॉर,
भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था, इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
प्रमोटिंग डायलॉग एंड डिप्लोमेसी,
विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर रूस और यूक्रेन की यात्रा करेंगे। इसका उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौता करना है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दोनों प्रतिनिधि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बातचीत में आगे बढ़ने की संभावना का पता लगाएंगे। उन्होंने कहा कि युद्ध में हो रहे भारी सैन्य नुकसान को देखते हुए ये समझौता जरूरी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि अमरीकी प्रतिनिधिमंडल पहले मॉस्को और फिर कीव जाएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 5 वर्ष का एक बच्चा भी शामिल है। सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि चीन से 1907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने कहा कि नेपाल को बेली ब्रिज भी भेजे जाएंगे।
We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
And recovery efforts in the country.
इस बीच नेपाल बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1295 हो गई है। बचाव दलों ने 12,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है, जबकि लगभग 5,000 लोग अब भी लापता हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हुआ। एक रिपोर्ट।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया गया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अमेरिका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है, जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने बलूचिस्तान में छात्र इमरान अली के लापता होने, कथित यातना के बाद मौत पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारियों से इमरान अली की हिरासत और मौत की तुरंत निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने बताया कि इमरान अली को पिछले साल 27 अगस्त को उनके घर से हिरासत में लिया गया था। इसके बाद करीब एक साल तक परिवार को उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों के अनुसार पूर्व बंदियों ने बताया कि अली को हिरासत में रखकर कई दिनों तक प्रताड़ित किया गया था। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बाद में बताया कि मई में एक मुठभेड़ में अली की मौत हो गई थी। उनके परिवार ने क्वेटा के एक अस्पताल में तस्वीरों के जरिए शव की पहचान की। संयुक्त राष्ट्र ने मामले की फॉरेंसिक जांच, अली के अवशेषों की उनके परिवार को सम्मानपूर्वक वापसी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
अमेरिका में डाक से मतदान को लेकर ट्रंप प्रशासन को तगड़ा झटका लगा है। एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को डाक से मतदान को सीमित करने वाले नए डाक सेवा नियम कानून को रोकने का आदेश दिया है। ट्रंप प्रशासन ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील करने और सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग करने की बात कही है।
अमेरिका में डाक से मतदान को लेकर ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका लगा है। एक संघीय जज ने ट्रंप प्रशासन को डाक से मतदान को सीमित करने वाले नए डाक सेवा नियम लागू करने से रोकने का आदेश बढ़ा दिया है। जज इंदिरा तलवानी ने कल ये आदेश जारी किया। ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने और सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग करने की बात कही है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कई राज्यों में डाक से मतदान के लिए मतपत्र भेजे जा रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना में भी मतपत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव अधिकारियों का कहना है कि चुनाव के समय मतदान के नियम बदलने से मतदाताओं में भ्रम हो सकता है। इससे कुछ लोगों को मतपत्र समय पर मिलने या वापस भेजने में परेशानी हो सकती है। जज तलवानी ने कहा कि इन बदलावों का असर लाखों मतदाताओं पर पड़ सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप लंबे समय से डाक से मतदान को सीमित करने की मांग करते रहे हैं। इस मुद्दे पर कई कानूनी मामले चल रहे हैं जिसका असर आगामी मध्यावधि चुनाव पर पड़ सकता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं अर्चना रंजन।
मिस वर्ल्ड 2026 का फाइनल आज वियतनाम के तटीय शहर ना ट्रांग में होगा। प्रतियोगिता में कुल 111 प्रतिभागी हिस्सा ले रही हैं। भारत का प्रतिनिधित्व 2024 की फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड की विजेता निकिता पोरवाल कर रही हैं। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल शाम प्रतियोगिता का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में खेलों का प्रमुख केंद्र बनेगा।
19 देशों से 108 से ज्यादा पैरा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं उस वक्त कि अहमदाबाद, गुजरात और भारत आने वाले दिनों में खेल जगत के, चाहे वो ओलंपिक्स से जुड़े हुए खेल हो, सभी प्रकार के खेल का ये बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है।
एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशिया के नूर मोहम्मद अयूब और टेन वी क्यूंग से होगा। सात्विक और चिराग ने कल क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को हराया था। इस जीत के साथ सात्विक और चिराग लगातार चौथी बार चीन मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। इस बीच किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा अपने अपने सिंगल्स मुकाबले हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत संघर्ष समाप्त होने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी। बेली ब्रिज के साथ अन्य सामग्री और भेजी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण अहमदाबाद में आज से शुरू। और दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।